ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सात्वाध्याय 23वां श्लोक। अन्तवत् तु फलं तेषां तत् भवति अल्पमेधसां देवान् देवयजः यान्ति मत् भक्ताः यान्ति माम् अपि। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। 2-3 दिन पहले हम ये चर्चा कर रहे थे कि किस तरह है अलग अलग प्रकार की उपासना से हमें अलग अलग गतियों की प्राप्ति होती है। यान्ति देव व्रता देवान् पितृन् यान्ति पितृव्रता भूतान् यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं देवलोक की प्राप्ति करते हैं, जो लोग पितरों की पूजा करते हैं पितृलोक में चले जाते हैं, जो लोग भूत प्रेत पिशाच इनकी पूजा करते हैं वो लोग उनके लोकों में चले जाते हैं, और आखिर में कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान के धाम में और सारे भौतिक जगत में बहुत अंतर है। मुख्य अंतर यही है कि भगवान के धाम में हम शाश्वत जीवन जी सकते हैं, जहां कोई चिंता नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं। लेकिन इस भौतिक जगत में चाहे हम देवलोक में जाएं, नरक लोक में जाएं, भूत प्रेत पिशाचों के लोक में जाएं, पितृलोक में जाएं, या तो फिर हम पृथ्वी पर रहें, ये सारे मृत्यु जन्म और मृत्यु के जगत हैं, इसलिए इनको मृत्युलोक कहते हैं। मृत्यु का सागर है ये। तो अगर हम कृष्ण या विष्णु के अलावा किसी की उपासना भी करते हैं तो हम ये जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा नहीं पा सकते। इसी बात को यहाँ पर श्री कृष्ण इस श्लोक में दोहरा रहे हैं और बताते हैं, देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि, कि देवताओं के उपासक देवलोक की प्राप्ति करते हैं लेकिन मद्भक्ता यान्ति मामपि, लेकिन मेरे भक्त उनको अलग गति की प्राप्ति होती है, वो मेरे पास चले आते हैं। अर्थात बहुत स्पष्ट भेद कर रहे हैं श्री कृष्ण देवलोकों में और उनके धाम में। और जो देवताओं के उपासक हैं उनके बारे में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, खुद कृष्ण की वाणी सुनिए। अंतवत्तु फलं तेषां तद् भवति अल्पमेधसां। वो कहते हैं कि देवताओं की पूजा करने वाले जो लोग होते हैं वो अल्प बुद्धि वाले होते हैं, अल्प मेधसाम। देखिए श्री कृष्ण स्वयं इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। भगवान खुद कह रहे हैं कि जो लोग देवी देवताओं के उपासक होते हैं देवी देवताओं के शरण में जाते हैं श्री कृष्ण या विष्णु भगवान के शरण को छोड़कर, तो ऐसे लोग अल्प बुद्धि वाले हैं। और एक जगह भी कृष्ण भगवान कह चुके हैं, कामस्तैस्तैर्हित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्य नियतः स्वया, कि जिनका हृदय भौतिक कामनाओं से भरा हुआ है, जिनके मन में इंद्र तृप्ति के विकार हैं, ऐसे लोग देवताओं की पूजा करने के अलग अलग विधि विधानों का पालन करते हैं और देवी देवताओं की उपासना करते हैं। तो इस प्रकार से कई जगह श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं कि देवी देवताओं की उपासना करना कोई अच्छी बात नहीं है, अल्प बुद्धि की बात है। और यहां पर भी इसी श्लोक में भगवान इसी बात को दोहरा रहे हैं। और क्या कारण दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? भगवान बोल रहे हैं, अंतवत्तु फलम तेषाम, अंतवत्तु फलम तेषाम, क्योंकि जिन फलों की प्राप्ति हो सकती है देवी देवताओं की पूजा करने से, तो उनकी उनका शुरुआत है और उनका अंत भी होता है, क्षणिक है ये। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। जो देवताओं के उपासक हैं वो कितने साल जिएंगे? 50 साल, 100 साल, 200 साल। और जो देवतागण हैं वो हजारों हजारों साल जीते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु तो एक न एक दिन होने वाली है। तो वो भी एक, अगर हम ब्रह्मांड के अवधि के अनुसार अगर देखेंगे तो फिर उनकी आयु तो कुछ भी नहीं है, क्षणिक ही है। जैसे एक छोटी सी कथा है कि एक बार इंद्रदेव, जो कि देवताओं के राजा हैं, वो इधर उधर जा रहे थे तो उनकी मुलाकात हुई एक ऋषि जिनका नाम था लोमश ऋषि। लोमश ऋषि वास्तव में बहुत ही वृद्ध ऋषि थे और उनको एक वरदान मिला था कि वो इतने साल जीने वाले हैं जितने उनके शरीर के ऊपर बाल हैं, रोम जितने हैं उतने साल वो जिएंगे नहीं, उतने ब्रह्मा के दिवस वो जिएंगे। तो देखिए ब्रह्मा का एक दिवस कितना लंबा होता है, ब्रह्मा का एक दिवस 1000 चतुर्युग इतना लंबा होता है। ये एक युग हमारा है कलयुग, कलयुग के पहले था द्वापर, द्वापर के पहले त्रेता, त्रेता के पहले सत्ययुग, इन चार युगों को मिलाकर एक चतुर्युग कहते हैं। ये जो चतुर्युग है 1000 बार जब दोहराया जाता है तो ये ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं, ब्रह्मा जी का एक दिवस। और ऐसे लंबे समय जो है, इतने दिन के लिए लोमश ऋषि को जीने का वरदान मिल गया। और लोमश ऋषि केवल एक पेड़ के नीचे बैठे अपना ध्यान कर रहे थे, उनके पास कोई घर नहीं था, कोई कुटिया नहीं थी, कुछ नहीं था। और इंद्र के पास तो आप जानते हैं सारे स्वर्ग लोक का ऐश्वर्य है। तो इंद्र ने देखा कि लोमश ऋषि के पास में कुछ नहीं है, रहने के लिए भी कोई स्थान नहीं है। तो उन्होंने जाकर लोमश ऋषि से कहा, ऋषि जी आप अपने लिए छोटी सी कुटिया क्यों नहीं बना देते? अगर चाहे तो मैं बना देता हूं आपके लिए। तो लोमश ऋषि ने कहा, नहीं नहीं, देखो अभी मृत्यु किसी भी समय आ सकता है, हमारे जीवन कितना कम समय का है, यह समय, ये हमारा जीवन, यही भूसारा ब्रह्मांड नश्वर है और हम कितने कम समय तक जीने वाले हैं। और अगर इतने कम समय में मैं घर बनाने में, इधर उधर भाग दौड़ करने में समय बिता दूं तो फिर भगवान की प्राप्ति के लिए मुझे कोई समय ही नहीं मिलेगा। अब देखिए लोमश ऋषि की आयु कितनी थी, इतने दिवस जितने ब्रह्मा जी के एक दिवस जितने, ऐसे उतने साल जिएंगे वो। लेकिन वो सोच रहे हैं कि मेरे जीवन की अवधि इतनी कम है, इतना समय मैं क्यों वेस्ट करूं, बर्बाद क्यों करूं। और इंद्र सोच रहे थे कि लोमड़ ऋषि के बराबर अगर उनकी तुलना की जाए तो मेरे जीवन की अवधि तो कुछ भी नहीं है, क्षणिक है, और फिर भी मैं स्वर्गलोक में बैठकर इतने बड़े बड़े मकान बना रहा हूँ, नंदन कानन में मैं रमण कर रहा हूँ, और ये लोमड़ ऋषि, इनकी जीवन की अवधि इतनी लंबी है कि मैं कल्पना नहीं कर सकता। अगर इंद्रदेव कल्पना नहीं कर सकते तो सोचे कि हम कैसे कल्पना कर सकते। तो इंद्रदेव सोचने लगे कि लोमड़ ऋषि की आयु इतनी लंबे होने पर भी वो कह रहे हैं कि ये जीवन क्षणिक है, कितने कम समय का जीवन है। तो इंद्रदेव को अंदर ही अंदर साक्षात्कार हुआ कि देखो मैं मेरा समय कितना बर्बाद कर रहा हूं, देवलोक में रहते हुए केवल मैं इंद्र तृप्ति कर रहा हूं। तो इस प्रकार से देवताओं के जीवन की अवधि जो है हमारे जीवन की अवधि के तुलना से लंबा लग सकता है हमें, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उनका जीवन भी क्षणिक है, वो भी थोड़े ही सालों के लिए जीने वाले हैं और फिर वो भी मर जाएंगे। तो देवताओं के उपासक क्षणिक हैं, देवता खुद क्षणिक हैं, और वो जो वरदान देने वाले हैं वो भी क्षणिक हैं, क्योंकि सारा ब्रह्मांड ही क्षणिक है। ब्रह्मांड भी कितने सालों तक रहेगा? ब्रह्मा जी के 100 साल की अवधि वो है ब्रह्मांड की अवधि। ब्रह्मा जी की जब मृत्यु हो जाएगी तो उस समय सारा जो भौतिक जगत है वो नष्ट हो जाता है और सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है महाविष्णु के शरीर में लीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देवताओं के उपासक क्षणिक हैं, देवतागण उपासक, वो देवतागण खुद क्षणिक हैं, और वो जो वरदान देते हैं वो भी क्षणिक। तो कोई भी चीज शाश्वत नहीं है देवताओं की पूजा के संबंध में, इसीलिए कृष्ण भगवान बता रहे हैं अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसां। ऐसे क्षणिक वरदानों के पीछे ये देवी देवताओं के उपासक भागते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि इनका वरदान भी क्षणिक ही होगा, तो फिर क्या फायदा है। दूसरी ओर कृष्ण भगवान की भक्ति अगर हम करेंगे तो हमें शाश्वत जीवन मिल सकता है, सच्चिदानंद जीवन वैकुंठ में जाकर हम जी सकते हैं। कुंठ मतलब चिंता का सागर, भय का सागर, और वैकुंठ मतलब जहां कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई कष्ट नहीं। तो ऐसे वैकुंठ में जाकर हम शाश्वत जीवन, आनंद का जीवन बिता सकते हैं, और उस नित्य शाश्वत जीवन को त्याग कर हम देवी देवताओं के पीछे भागते हैं क्षणिक वरदानों के लिए जो किसी भी समय खत्म हो सकते हैं। तो देखिए, इसलिए भगवान इतने कठोर शब्दों में कह रहे हैं कि जो लोग देवी देवताओं की उपासना करते हैं उनकी बुद्धि कम है। भगवान कभी भी कोई बात कहना तो स्पष्ट कह देते हैं, इधर उधर बातें नहीं करते हैं। तो यहां पर भी भगवान बोल रहे हैं, और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि यह जगत अनित्य है इसलिए हमें कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। अनित्यम असुखम लोपकम इमं प्राप्य भजस्वमाम। 9वें अध्याय में भगवान बताते हैं क्योंकि ये जगत क्षणिक है और दुख का सागर है, इसलिए ऐसे क्षणिक जगत में तुम्हें मेरा भजन करना चाहिए, जिससे कि तुम एक शाश्वत जगत की प्राप्ति कर सकते हो जहां कोई दुख नहीं होगा, केवल आनंद ही आनंद होगा। लेकिन हम देवताओं के लोक की भी प्राप्ति करेंगे, अगर हम वहां भी चले जाएंगे फिर भी हमें यहां लौटकर आना होगा। देवी देवताओं की उपासना करने वाले लोग वास्तव में वेदों के जो मंत्र होते हैं उनसे बहुत आसक्त होते हैं, और इस प्रकार से वो देवलोक में जो भोग उपलब्ध होते हैं उनको भोगने की इच्छा रखते हैं। त्रैविद्या माम सोम पाह पूत पापा यज्ञे रिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते अश्नन्ति दिव्यान देवी देव भोगान। कृष्ण भगवान बताते हैं कि ऐसे लोग हैं त्रैविद्या, जो 3 वेदों का पाठ करते हैं और कर्मकांड के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, और ऐसे जो कर्मकांड के यज्ञ भी कर लेते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है। अश्नन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगान। अश्नन्ति मतलब भोग करना, दिव्यान मतलब देवताओं के लोक में जाकर उन देव वो दिव्य भोग को का आनंद लेना चाहते हैं। लेकिन आगे चलकर इसी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, कि जब ये विशाल भोग कर लेता है, विशाल भोग का आनंद ले लेता है, तो क्या होता है, जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो पुनः उसे ये मर्त्य लोक में आना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, हजारों करोड़ों साल तक क्यों न जिए उधर, वो इतने ही समय जी सकता है स्वर्ग लोक में जितना कि उसके पुण्य है, पुण्य का स्टॉक जितना है उतना वो रह सकता है वहां पर। जब वो स्टॉक पुण्य का खत्म हो जाएगा तो फिर से पृथ्वी लोक पर मर्त्य लोक में उसका पतन हो जाएगा। महाभारत में बताया गया है कि जब ठीक यही बात होती है देवताओं के साथ में, जब उनको पता चलता है कि मेरे पुण्य क्षीण हो गए हैं और पृथ्वी लोक पर गिर जाने का, पतन होने का समय आ गया है, तो बहुत उदास और निराश हो जाते हैं। और ऐसी अवस्था में वो गिरते गिरते गिर जाते हैं स्वर्गलोक से ऊपर, गिरते 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 फिर उनके जो सूक्ष्म शरीर को, ऐसे प्राणी है राक्षस जो उनके शरीर को खाने लगते हैं, उनको इतनी दर्द होती है कि आंखों से बड़े बड़े आंसू आते हैं, फिर उनको प्राण त्यागना पड़ता है और उन आंसुओं के माध्यम से उनकी आत्मा फिर यहां बादल में आती है, फिर वर्षा के भीतर आकर जमीन पे गिर जाती है, जमीन में आकर फिर वो किसी भी बीज में चली जाती है और बीज में से फिर वो पौधा हो जाता है, अन्न हो जाता है, और कोई पुरुष उस अन्न को ग्रहण कर लेता है और फिर उसके माध्यम से फिर वो किसी उस जीव को एक शरीर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से देवी देवता गण देखिए, इतना ऊंचा पद मिल जाता है उनको, लेकिन आखिर में अनाज के दाने के भीतर आ जाते हैं। कहां से कहां, कहां अनाज का दाना और कहां इंद्रदेव। तो ये दशा है। तो अगर भी हम ऐसे अवस्था को प्राप्त करें, फिर भी हमें क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, फिर यहीं पर आना होगा। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं, ये ऊपर नीचे का मामला जो है, पृथ्वी लोक में देवताओं की पूजा करना, देव लोक में जाना, फिर उधर से पतन होना, फिर से यहाँ आना, फिर से उनकी पूजा करना, फिर से ऊपर जाना, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। और जो देवता का उपासक है, कभी देवता का उपासक होता है, कभी देवता बन जाता है, फिर से देवता का उपासक बन जाता है। तो इस प्रकार से ऊपर नीचे करते करते हजारों करोड़ों जन्म बीत जाते हैं और कभी भी उसे सोचने का समय नहीं मिलता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, जीवन का उद्देश्य क्या है। केवल ये भौतिक कीचड़ में रमण करते रहता है, सोचता है कि यही सब कुछ है। इसीलिए कृष्ण भगवान हमें चेतावनी देते हैं, सावधान करते हैं, क्यों अपना समय बर्बाद करते हो ये ऊपर नीचे के चक्कर में। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमताम् उपर्यतः। नारद मुनि व्यासदेव को भागवत में बताते हैं कि आदमी को ऐसे कार्य के लिए प्रयास करना चाहिए जो सारे ब्रह्मांड में ऊपर नीचे भ्रमण करने के पश्चात भी प्राप्त नहीं होता। वो कौन सी चीज है जो आपको इधर उधर भटकने के बाद भी नहीं मिलेगी, वो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। अगर आपको भक्त बनना है तो यहीं पर आप भक्त बन सकते हैं, आपको देवलोक में जाने की आवश्यकता नहीं है। और देवलोक में जाएंगे भी तो वहां कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर भोग के इतने सारे साधन होते हैं कि ऐसे ऐश्वर्य और भोग के वातावरण में भगवान की भक्ति हम नहीं कर सकते। इसलिए कुंती महारानी भी प्रार्थना करती है श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण से, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिर एध मानम मध कुमार नैवर्हति अभिधातुं वै त्वाम अकिंचन गोचरः। वो प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, जिन व्यक्तियों के पास में ये चार चीजें हैं, कौन सी चार चीज, जन्म अर्थात कोई ऊंचा जन्म, किसी ऊंचे परिवार में जन्म, राजवाड़े में कोई जन्म, या ऊंचे ब्राह्मण परिवार में जन्म, ऐसे जिसका ऊंचा जन्म होता है, या तो फिर ऐश्वर्य जो बहुत धनी होता है, जिसके पास बहुत धन होता है, श्रुति अर्थात बहुत शिक्षण होता है, PhD MA BA सब कर लिया है, या पंडित है, विद्वान है, या तो फिर श्री जो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर शरीर है। तो जिन व्यक्तियों के पास में ये चार चीजें हैं या इन चार चीजों में से एक भी अगर है तो क्या होता है, एधमान मदह पुमान, ऐसे व्यक्ति घमंडी बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारे चीजें ऐसे हैं, धन और फिर ऊंचा जन्म, सौंदर्य, ये सब ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आदमी का सर फूल जाता है, नम्रता नष्ट हो जाती है और फिर ये चीजें एक नशे के बराबर होती है। मदह मतलब नशा। इसलिए हम देखते हैं संसार में जो बहुत बड़े लोग होते हैं, तथाकथित बड़े लोग या बहुत ही प्रतिष्ठित लोग होते हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं इस वर्ग में जो नम्र होते हैं। क्योंकि ऐसे ऐश्वर्य से, ऐसे ऊंचे जन्म से, ऐसे ऊंचे पद से या ऐसे सौंदर्य से इत्यादि इतने घमंडी बन जाते हैं कि ऐसे बन जाते हैं जैसे कोई व्यक्ति ने मदपान किया हो, नशे की अवस्था में। इसलिए माता कुंती कहती हैं कि ऐसे लोग हैं प्रभु आपकी प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो कौन आपकी प्राप्ति कर सकता है? त्वाम अकिंचन गोचर, जो अकिंचन है। अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं है, खाली जेब वाला, जिसने अपनी सारी आशाएं आपके चरण कमलों में रखी हुई हैं, जिनको ये संसार में कोई आशा नहीं है, संसार में प्रगति करने की कोई इच्छा नहीं है, केवल आपकी सेवा करना चाहता है, भौतिक योजनाएं बनाना उसने बंद कर दिया है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को निष्किंचन या अकिंचन कहते हैं। इसलिए अगले ही श्लोक में कुंती महारानी कहती है, नमो अकिंचन वित्ताय, कि आप हे प्रभु ऐसे अकिंचन व्यक्तियों के आप धन हैं, जिनके जेब खाली होते हैं और जो कृष्ण के शरण में जाते हैं तो सबसे बड़ी धनी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि असली धन उनको मिल जाता है कृष्ण प्रेम का, कृष्ण भक्ति का। तो इस प्रकार से कुंती महारानी की घोषणा है कि जो बहुत ऐश्वर्य के वातावरण में रहते हैं, भोग के वातावरण में रहते हैं, उनके लिए भगवान की भक्ति करना बहुत कठिन है। इसलिए जो देवी देवतागण हैं, जो देवलोक में निवास करते हैं, हालांकि वो भी सुर कहलाते हैं, हालांकि वो भक्त कहलाते हैं, फिर भी तीव्रता से भक्ति करना उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि ऐसा वातावरण वहां है, भोग का वातावरण। उसके विपरीत जो साधारण आदमी यहां पर भौतिक संस्कृति पृथ्वी लोक पर जी रहा होता है, भले क्यों गरीब क्यों ना हो, लेकिन जिसके हृदय में भगवान के प्रति शुद्ध भावना है, तो ऐसा व्यक्ति देवताओं से भी ऊंचा माना जाता है, भगवान की दृष्टि से ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि वो अकिंचन है, संसार में कोई भोग करना नहीं चाहता है, देवी देवताओं की भी उपासना नहीं करना चाहता, केवल कृष्ण की सेवा करना चाहता है। और ऐसे व्यक्ति की भावना क्या है? वो सभी को नमस्कार करता है, सभी को नम्र उसके प्रार्थना या उसके जो प्रणाम करता है, लेकिन उसका प्रेम, उसकी सेवा केवल कृष्ण भगवान के प्रति होती है। माधवेंद्र पुरी नाम के आचार्य हमारे गौड़ी वैष्णव परंपरा में हैं और वो चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु और महान वैष्णव थे, भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त। तो उन्होंने सुंदर प्रार्थना की थी जिसमें वो बताते हैं कि वो ये समझा रहे हैं, हमें सिखला रहे हैं कि किस प्रकार से हमें और कहीं भी नहीं ध्यान देना चाहिए, केवल कृष्ण के शरण में ही हमें जाना चाहिए और कृष्ण भक्ति में ही ध्यान देना चाहिए। और वो बताते हैं, भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षमः क्षम्यताम संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो। वो कहते हैं कि संध्या वंदन, हे मेरे गायत्री मंत्र इत्यादि, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको नहीं कर सकता, मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता। संध्या वंदनम भद्रमस्तु भवतो भो स्नान तुभ्यम नमः। अभी ब्राह्मण के लिए कर्तव्य होता है कि दिन में 3 बार 4 बार स्नान करना, तो कहते कि हे स्नान देवी मुझे क्षमा कीजिए, भो देवः पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षमः क्षम्यताम। हे देवतागण, हे मेरे पितृ, पितृलोक के निवासी, मुझे क्षमा कीजिए, मैं तर्पण पिंड इत्यादि अभी आपको नहीं दे सकता। देवतागण, मैं आपके प्रति यज्ञ कर्मकांड वगैरह नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वो कहते हैं कि यत्र यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तमस्य कंसद्विषाः, क्योंकि मैं पहले से यादव कुलोत्तमस्य मतलब यादव कुल के जो उत्तम पुरुष हैं श्री कृष्ण, कंस द्विषाः जो कंस का वध करने वाले हैं, स्मारम स्मारम अघम हरामि तम मन्ये किम अन्येन में। वो कहते हैं कि स्मारम स्मारम मैं यही कृष्ण जो कि कंस के वध करने वाले हैं, जो कि यदुकुल के प्रमुख पुरुष हैं, स्मारम स्मारम उनका ही स्मरण में करता हूं, और इससे क्या फल प्राप्त होता है? अघम हरामि, जो मेरे पाप है हरण हो जाते हैं। कृष्ण का स्मरण करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं किम अन्येन में, और मुझे और क्या चीज की आवश्यकता है? मैं कृष्ण का भक्त हूं और ये मेरे लिए काफी है, पर्याप्त है मेरे लिए। केवल हमेशा मैं कृष्ण का स्मरण करता रहूं तो मुझे ना तो देवताओं के प्रति जाना है, ना पितरों के प्रति जाना है, ना तो मुझे ब्राह्मणों की संध्या वंदन करनी है, ना कुछ करना है, क्योंकि मैं कृष्ण का स्मरण करता हूं। तो इससे हमें समझ में आता है कि कृष्ण की भक्ति करना ये कितना महत्वपूर्ण है, और उससे क्या किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। शुद्ध प्रेम, अगर वास्तव में हम जानते कि ये कृष्ण भक्ति क्या चीज है, तो हम सभी इसी क्षण को शुद्ध भक्त बन जाते हैं। लेकिन हम इस बात को समझ नहीं रहे हैं, इसलिए हम शुद्ध कृष्ण भक्त नहीं बन रहे, इसलिए हमें समय लगता है। और कृष्ण को छोड़कर फिर लोग अलग अलग देवी देवताओं के पास में जाते हैं। वो लोग ये नहीं समझते कि देवी देवता वास्तव में श्री कृष्ण के अंश हैं, उनके विराट रूप के अंग हैं वो। जिस प्रकार से ये हाथ जो है ये हमारे शरीर का अंग है, हमारा कान है शरीर का अंग है। अगर आपको भोजन खाना है तो क्या आप कहां से खिलाएंगे भोजन? शरीर को, मुंह से खिलाएंगे। अगर कोई आदमी कहे कि मुझे भोजन खिलाना है कान से, और कान में घुसाता रहेगा भोजन, भले कितना स्वादिष्ट क्यों न हो, भोजन कहां तक पहुंच जाएगा, क्या दशा होगी उसकी? और दूसरा कहता है नहीं नहीं कान ठीक नहीं है, मेरे हाथ को ही खाना चाहिए, और हाथों में वो भोजन को है जो दबाते रहता है, सोचता है कि मुझे पौष्टिकता मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक भोजन को मुंह में नहीं डालेंगे तब तक पेट में नहीं जाएगा, और जब तक पेट में नहीं जाएगा भोजन तब तक पचन नहीं होगा, पचन नहीं होगा तो शक्ति नहीं आएगी, पौष्टिकता नहीं आएगी। तो ठीक उसी प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर हमें शक्तिशाली रहना है तो जड़ को पानी डालना है जो श्री कृष्ण है। देवी देवता भगवान के अलग अलग विराट रूप के अलग अंग हैं, तो अंगों की अलग अलग से पूजा करने से क्या लाभ मिलेगा? हमें भोजन मुंह में डालना है, इसीलिए हमें केवल कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, केवल कृष्ण का भजन करना चाहिए। जो लोग इस तत्व को समझते नहीं हैं, वो बहु ईश्वरवादी हो जाते हैं। बहु ईश्वरवादी मतलब ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, वो भी भगवान, दुर्गा देवी भी भगवान, गणेश जी भी भगवान, शिव जी भी भगवान, काली भी भगवान, विश्वकर्मी भी भगवान, सब भगवान। इसको बहु ईश्वरवाद कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्पष्ट रूप से ज्ञान नहीं है कि भगवान कौन है और देवी देवताएं कौन है, सब एक समान। और फिर बहु ईश्वरवादी से मायावादी बनना बहुत कम अंतर है इसमें। मायावादी मतलब कौन होता है? जो सोचता है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। भगवान मतलब केवल निराकार निर्गुण निर्विशेष सत्य है, आध्यात्मिक सत्य है। इसीलिए ये जो बहु ईश्वरवादी होते हैं और मायावादी होते हैं, इनमें ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि ये बहु ईश्वरवादी बहुत ही जल्दी मायावादी बन जाएगा। इसलिए जो मायावादी लोग होते हैं उनके प्रमुख एक उपासना होती है जिनको पंचोपासना कहते हैं। मायावादी दर्शन में वो पांच देवताओं की पूजा करते हैं और सोचते हैं कि ये पांच बराबर हैं और इन पांच में से किसी की भी पूजा करेंगे तो एक समान है और एक ही गति की प्राप्ति होगी आपको। तो पंच उपासना के कौन से पांच देवी देवता है कोई बता सकते हैं? सूर्यदेव और गणेश जी और शिव जी। हाँ बोलिए। दुर्गा देवी और आखिर में रहे कौन? विष्णु को भूल गए आप? विष्णु। ये पांच हैं और वो समझते हैं कि ये पांच बराबर हैं सब, किसी की भी पूजा कीजिए। और क्यों समझते हैं कि ये पांच बराबर हैं? क्योंकि सोचते हैं कि ये पांचों और अन्य जो भी सारे देवी देवता हैं वास्तव में निराकार से उत्पन्न हुए हैं। निराकार परब्रह्म ने इन देवी देवताओं का रूप धारण किया है, इसलिए पंच उपासना का मार्ग वो अपनाते हैं। लेकिन ये एक अपराध है कृष्ण नाम के प्रति। दूसरा अपराध, नाम अपराध कौन सा है? देवी देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तो इस प्रकार से ये बहुईश्वरवादी और मायावादी कृष्ण नाम के प्रति अपराधी बन जाते हैं और इसीलिए कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कभी नहीं कर सकते, जीवन के संसिद्धि की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ये स्पष्ट ज्ञान मिला है श्री कृष्ण के माध्यम से। भगवद गीता में, श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने और उनके भक्तों ने स्पष्ट रूप से बताया है कि सत्य क्या है, कि कृष्ण ही परम भगवान है और उन्हीं के शरण में जाना हमारे वास्तविक हित का मार्ग है। इसलिए सभी को इस मार्ग में चलना चाहिए। बहुत आसान मार्ग है। जो भी भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करता है, उनके भक्तों का संग करता है, वो व्यक्ति इस गति की प्राप्ति कर सकता है। तो यहाँ पर जैसे भगवान बताते हैं, अंतवंत तु फलम तेषाम तद भवत्यल्पमेधसाम देवान देव यदो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम। तो हमें अल्पमेधसाम नहीं बनना है, हमें क्या बनना है? सुमेधसाम। सुमेधसाम मतलब बहुत बुद्धिमान। और इस कलयुग में सुमेधसाम कौन है? जो हरिनाम का संकीर्तन करते हैं। ये भी श्रीमद् भागवत में बताया गया है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राहेर यजंती सुमेधशः। जो व्यक्ति ये संकीर्तन यज्ञ में भाग लेंगे वो वास्तव में सुमेधस हैं, सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है। तो इसलिए ये कृष्ण भावना का संस्था की किसी संस्था जो है, कृष्ण भावना भावित संस्था, ये हमारी संस्था का कार्य एक ही है कि इस गीता और भागवत के ज्ञान का वितरण सब जगह करना और लोगों को सुमेधस बनाना। इसके पहले हमें भी सुमेधस बनना है, हमारे हृदय में भी, हृदय के कोने कोने में भी देवी देवताओं के प्रति या अन्य किसी व्यक्तियों के प्रति आसक्ति अगर रही है तो उसे त्याग कर केवल हमें श्री कृष्ण को हमारे हृदय में स्थापित करना है, तब जाकर हमारे जीवन की सफलता प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी? यह कि पंचोपासना के जो पांच देवता हैं उसमें विष्णु जी का नाम आया, तो प्रश्न क्या है? ये मायावादी लोग ऐसे समझते हैं ना, ये पंचोपासना तो मायावादी लोगों की उपासना है। वो पांचों को एक बराबर समझते हैं, विष्णु में और अन्य देवताओं में अंतर नहीं समझते हैं वो। इसलिए ये एक प्रकार का अपराध होता है क्योंकि सत्य को वो नहीं जानते हैं। और कोई प्रश्न? प्रश्न ये है, भारतवर्ष में ये प्रश्न कई लोगों पर लागू होगा। गीता में भगवान बताते हैं कि पितरों की पूजा करने वाले पितर लोग जाते हैं, देवताओं की पूजा करने वाले देव लोग जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूत लोक में जाते हैं, कृष्ण की भक्ति करने वाले कृष्ण लोक में जाते हैं। लेकिन सारे चीजें जो करते हैं जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है, भूत प्रेत की पूजा करता है, पितरों की पूजा करता है, कृष्ण की सेवा भी करता है, वो कहां जाएगा? कोई जवाब दे सकते हैं इसका? हाँ, वैज्ञानिक वैज्ञानिक उत्तर दीजिए, एक श्लोक में दीजिए। तो फिर अंत में क्या होगा? सही है, लेकिन एक श्लोक में इसका जवाब यह होगा, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जितने लोगों की उपासना वो करता है, लेकिन मृत्यु के समय जो इसकी तीव्र उसकी जो चेतना है, जहां उसकी आसक्ति सबसे ज्यादा है, उसी चीज के बारे में वो स्मरण करेगा और वैसे ही उसकी अगले जन्म में गति होगी। हो सकता है कि इन सबों की पूजा करता है लेकिन सोचता है अपने पत्नी के बारे में या पति के बारे में, तो फिर देवलोक में नहीं जाएगा, भूतलोक में नहीं जाएगा, पितृलोक में नहीं जाएगा। हो सकता है उसने इतने पाप किए हैं कि वो नरक लोक में जाएगा। तो जैसे उसकी चेतना होगी मृत्यु के समय, वैसे वैसे उसे अगले गति की प्राप्ति होगी। लेकिन यहां भगवान एक जनरल सामान्य बात बता रहे हैं कि अगर इस दिशा में आप जाएंगे, अगर देवताओं की पूजा करते रहेंगे तो आपकी गति आगे चलकर ये होगी। तो आप थोड़ा थोड़ा ऐसे वैसे करते रहेंगे, जो भी उसका नेट होगा वो आपको मिल जाएगा। जो भी चेतना अंत में होगी मृत्यु के समय, उस चेतना के अनुसार अगले गति की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हमें तो उस स्थिति में नहीं रहना है, हमें केवल कृष्ण भक्ति करनी है और कृष्ण के धाम को प्राप्त करना है। शिला की पूजा आवश्यक है या नहीं? आवश्यक तो नहीं है, लेकिन वैष्णव शालिग्राम की पूजा करते हैं। वैष्णव ही नहीं, सारे, एक विधि है हमारे वैदिक संस्कृति में कि सारे ब्राह्मण शालिग्राम की शिला की पूजा करते हैं। पुराने जमाने में हम देखते थे कि हर एक ब्राह्मण घर में शालिग्राम और तुलसी अवश्य हुआ करते। ब्राह्मणों का कर्तव्य होता था कि शालिग्राम शिला की उपासना करें, सेवा करें। लेकिन जो व्यक्ति वैसे भी कृष्ण की भक्ति कर रहा है, शालिग्राम शिला की उपासना करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर वो कर सकता है तो अच्छी बात। लेकिन ऐसा नहीं कि शालिग्राम की शिला की पूजा नहीं करेंगे तो आप कृष्ण लोक नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, फिर वो अच्छी बात। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभुपाद की, श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.